आशा की किरण लेकर आई हूँ मैं किरण आचार्य। ये पॉडकास्ट जहाँ पर होगी ढेर सारी बातें जो हमेशा महकती रहेंगी खुशियों से, आशाओं से, उम्मीदों से, आकांक्षाओं से और उत्साह से। यानी कि ये है आपके जीवन में एक नया सूर्योदय। तो फिर हमेशा मिलते रहिए आशा की किरण में हमसे। राग द्वैष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रैश्चरण आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। अर्थात परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। तू पद का क्या भाव है? पूर्व श्लोकों में जिसके मन इंद्रिय वश में नहीं है ऐसे विषयी मनुष्य की अवनति का वर्णन किया गया है। अब दो श्लोकों में उसकी विलक्षण जिसके मन इंद्रिय वश में किए हुए हैं ऐसे विरक्त साधक की उन्नति का वर्णन किया जाता है। इस भेद का द्योतक यहाँ तू पद है। विधेयात्मा पद कैसे साधक का वाचक है जिसका अंतःकरण भली भांति वश में किया हुआ है। ऐसे साधक का वाचक यहाँ विधेयात्मा पद है। ऐसे साधक का अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करना क्या है? साधारण मनुष्यों की इंद्रियां स्वतंत्र होती हैं, उनके वश में नहीं होती। उन इंद्रियों में राग द्वेष भरे रहते हैं। इस कारण उन इंद्रियों के वश होकर भोगों को भोगने वाला मनुष्य उचित अनुचित का विचार न करके जिस किसी प्रकार से भोग सामग्रियों के संग्रह करने और भोगने की चेष्टा करता है और उन भोगों में राग द्वेष करके सुखी दुखी होता रहता है उसे आध्यात्मिक सुख का अनुभव नहीं होता। किंतु उपर्युक्त साधक की इंद्रियां उसके वश में होती हैं और उनके राग द्वेष का अभाव सदैव रखती हैं। इस कारण वह अपने वर्ण आश्रम और परिस्थिति के अनुसार योग्यता से अधिक हुए भोगों में बिना राग द्वेष के विचरण करता है। उसका देखना सुनना खाना पीना उठना बैठना बोलना बतलाना चलना फिरना और सोना जागना आदि समस्त इंद्रियों के व्यवहार नियमित और शास्त्र विहित होते हैं। उसकी सभी क्रियाओं में राग द्वेष काम क्रोध और लोभ आदि विकारों का अभाव होता है। यही उसका अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करना है। पहले 59वें श्लोक में यह कहा जा चुका है कि परमात्मा का साक्षात्कार हुए बिना राग का नाश नहीं होता और यहाँ राग द्वेष रहित होकर विषयों में विचरण करने से प्रसाद को प्राप्त होकर स्थिर बुद्धि होने की बात कही गई है। यहाँ के इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि परमात्मा की प्राप्ति से पूर्व भी राग द्वेष का नाश संभव है। अतएव इन दोनों कथनों में जो विरोध प्रतीत होता है उनका समन्वय कैसे होता है? दोनों में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वहां 59वें श्लोक में तो राग द्वेष का अत्यंत अभाव बतलाया गया है और यहाँ राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषय सेवन की बात कहकर राग द्वेष के सर्वथा अभाव की साधना बताई गई है। तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक में इंद्रियां, मन और बुद्धि इन तीनों को ही काम का अधिष्ठान बताया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि इंद्रियों में राग द्वेष न रहने पर भी मन या बुद्धि में सूक्ष्म रूप से राग द्वेष रह जाते हैं, परंतु 59वें श्लोक में अस्य पद का प्रयोग करके स्थिर बुद्धि पुरुष में राग द्वेष का सर्वथा अभाव बताया गया है। यहाँ केवल इंद्रियों में ही राग द्वेष के अभाव की बात नहीं है। इंद्रियों से विषयों का संयोग न होने देना, यानी बाहर से विषयों का त्याग, इंद्रियों का संयम और इंद्रियों का राग द्वेष से रहित हो जाना, इन तीनों में श्रेष्ठ और भगवत प्राप्ति में विशेष सहायक कौन है? तीनों ही भगवान की प्राप्ति में सहायक हैं, किंतु इनमें बाह्य विषय त्याग की अपेक्षा इंद्रिय संयम और इंद्रिय संयम की अपेक्षा इंद्रियों का राग द्वेष से रहित होना विशेष उपयोगी और श्रेष्ठ है। यद्यपि बाह्य विषयों का त्याग भी भगवान की प्राप्ति में सहायक है, परंतु जब तक इंद्रियों का संयम और राग द्वेष का त्याग न हो, तब तक केवल बाह्य विषयों के त्याग से विषयों की पूर्ण निवृत्ति नहीं हो सकती और न कोई सिद्धि ही प्राप्त होती है। तथा ऐसी बात भी नहीं है कि बाह्य विषय का त्याग किए बिना इंद्रिय संयम हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान की पूजा, सेवा, जप और विवेक, वैराग्य आदि दूसरे उपायों से सहज ही इंद्रिय संयम हो जाता है एवं इंद्रिय संयम हो जाने पर अनायास ही विषयों का त्याग किया जा सकता है। इंद्रियां जिसके वश में है वह चाहे जब चाहे जिस विषय का त्याग कर सकता है। इसीलिए बाह्य विषय त्याग की अपेक्षा इंद्रिय संयम श्रेष्ठ है। इस प्रकार इंद्रिय संयम भी भगवत प्राप्ति में सहायक है, परंतु इंद्रियों के राग द्वेष का त्याग हुए बिना केवल इंद्रिय संयम से विषयों की पूर्णतया निवृत्ति होकर वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। और ऐसी बात भी नहीं है, बाह्य विषय त्याग तथा इंद्रिय संयम हुए बिना इंद्रियों के राग द्वेष का त्याग हो ही नहीं सकता हो। सत्संग, स्वाध्याय और विचार द्वारा सांसारिक भोगों की अनित्यता का भान होने से तथा ईश्वर कृपा और भजन ध्यान आदि से राग द्वेष का नाश हो सकता है। और जिसके इंद्रियों में राग द्वेष का नाश हो गया है, उसके लिए बाह्य विषयों का त्याग और इंद्रिय संयम अनायास अपने आप ही हो जाता है। जिसका इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष नहीं है, वह पुरुष यदि बाह्य रूप से विषयों का त्याग न करे तो विषयों में विचरण करता हुआ परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए इंद्रियों का राग द्वेष से रहित होना विषयों के त्याग और इंद्रिय संयम से भी श्रेष्ठ है। प्रसादम पद यहाँ किसका वाचक है? वश में हुई इंद्रियों द्वारा बिना राग द्वेष के व्यवहार करने से साधक का अंतःकरण शुद्ध और स्वच्छ हो जाता है। इस कारण उसमें आध्यात्मिक सुख और शांति का अनुभव होता है। उस सुख और शांति का वाचक यहाँ प्रसादम पद है। इस सुख और शांति के हेतु रूप अंतःकरण की पवित्रता को और भगवान के अर्पण की हुई वस्तु अंतःकरण को पवित्र करने वाली होती है, इस कारण उसको भी प्रसाद कहते हैं। परंतु अगले श्लोक में उपरिक्त पुरुष के लिए प्रसन्न चेतसह पद का प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ प्रसादम पद का अर्थ अंतःकरण की आध्यात्मिक प्रसन्नता मानना ही ठीक मालूम होता है।
चंगुल से बाहर आ जाए। एवं चंचल इंद्रियों को वश करने की सामर्थ्य बढ़ाए। तन मन पर बस कर ले नियंत्रण, तन मन पर बस कर ले नियंत्रण, ध्यान की ज्योति भले न जगाए। निसंदेह किए बिन याचना वो अनुकंपा हर की पाए। निसंदेह किए बिन याचना वो अनुकंपा हर की पाए। से घट भर ले जाए, फिर संसार के तीनों ताप में एक भी ताप से न जलाए। जिसकी चेतना तुष्ट हो ऐसी, जिसकी चेतना तुष्ट हो ऐसी, उसकी बुद्धि में स्थिरता आए। साधक योगी या स्थित प्रज्ञ कोई भी विशेषण उसको सजाए। साधक योगी या स्थित प्रज्ञ कोई भी विशेषण उसको सजाए।
प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। अर्थात अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है।
बसे मन भावे कृष्ण मुरारी जी, आँख बसे मन भावे बाके बिहारी जी, आँख बसे मन भावे।
अंतःकरण की प्रसन्नता से सारे दुखों का अभाव कैसे हो जाता है? पापों के कारण ही मनुष्यों को दुख होता है और कर्म योग के साधन से पापों का नाश होकर अंतःकरण विशुद्ध हो जाता है तथा शुद्ध अंतःकरण में ही उपर्युक्त सात्विक प्रसन्नता होती है। इसलिए सात्विक प्रसन्नता से सारे दुखों का अभाव बतलाना न्याय संगत ही है। सर्व दुखा नाम पद किनका वाचक है और उनका अभाव हो जाना क्या है? अनुकूल पदार्थों के वियोग और प्रतिकूल पदार्थों के संयोग से जो आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक नाना प्रकार के दुख सांसारिक मनुष्यों को प्राप्त होते हैं, उन सब का वाचक यहाँ दुखा नाम पद है। उपर्युक्त साधक को आध्यात्मिक सात्विक प्रसन्नता का अनुभव हो जाने के बाद उसे किसी भी वस्तु के संयोग वियोग से किंचित मात्र भी दुख नहीं होता। वह सदा आनंद मग्न रहता है। वही संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाना है।
नींद उनींद जग के कारज करते सोचूं शाम की सोची, रसिया जोगी कान बजावे मुरली बोल दिए तक पहुँची। रास बिहारी जी, आँख बसे।
प्रसन्न चित्त वाले योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर भली भांति परमात्मा में स्थिर हो जाती है। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया है कि अंतःकरण के पवित्र हो जाने पर जब साधक को आध्यात्मिक प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है, तब उसका मन क्षण भर भी उस सुख और शांति का त्याग नहीं कर सकता। इस कारण उसके अंतःकरण की वृत्तियां सब ओर से हट जाती हैं और उसकी बुद्धि शीघ्र ही परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हो जाती है। फिर उसके निश्चय में एक सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं रहती। अर्जुन का प्रश्न स्थित प्रज्ञ सिद्ध पुरुष के विषय में था। इस श्लोक में साधक का वर्णन है, क्योंकि उसका फल प्रसाद की प्राप्ति के द्वारा शीघ्र ही बुद्धि का स्थिर होना बतलाया गया है। अतएव अर्जुन के चौथे प्रश्न का उत्तर इस श्लोक से कैसे माना जा सकता है? यद्यपि अर्जुन का प्रश्न साधक के संबंध में नहीं है, परंतु अर्जुन साधक हैं और भगवान उन्हें सिद्ध बनाना चाहते हैं। अतएव सुगमता के साथ उन्हें समझाने के लिए भगवान ने पहले साधक की बात कहकर अंत में 71वें श्लोक में उनका सिद्ध में उपसंहार कर दिया है। अर्जुन के प्रश्न का पूरा उत्तर तो उस उपसंहार में ही है। उसकी भूमिका का आरंभ इन्हीं श्लोकों से हो जाता है। अतएव अर्जुन के चौथे प्रश्न का उत्तर यहीं से आरंभ होता है, ऐसा ही मानना उचित है।
कृष्णामृत में जो आंतरिक भावना का परमेश्वर से जुड़ाव नहीं रखता, होती ही नहीं है प्राप्त उसे दिव्य बुद्धि। वह मन की स्थिरता का रस नहीं चखता, दिव्य बुद्धिहीन और अनिश्चिर मन वाला वस्तु का वास्तविक रूप नहीं लगता। प्रभु की प्रकृति परमार्थ की, परंतु प्रभु पहले दानोचित पात्र परखता।
इस प्रकार मन और इंद्रियों को वश में करके अनासक्त भाव से इंद्रियों द्वारा व्यवहार करने वाले साधक को सुख शांति और स्थित प्रज्ञ अवस्था प्राप्त होने की बात कहकर अब दो श्लोकों द्वारा इससे विपरीत जिसके मन इंद्रिय जीते हुए नहीं हैं, ऐसे विषयासक्त मनुष्य में सुख शांति का अभाव दिखलाकर विषयों के संग से उसकी बुद्धि के विचलित हो जाने का प्रकार बतलाते हैं। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम्। अर्थात न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? अयुक्तस्य पद यहां कैसे मनुष्य का वाचक है? जिसके मन और इंद्रिय वश में किए हुए नहीं है एवं जिसकी इंद्रियों के भोगों में अत्यंत आसक्ति है, ऐसे विषयासक्त अविवेकी मनुष्य का वाचक यहाँ अयुक्तस्य पद है। अयुक्त में बुद्धि नहीं होती, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है की 41वें श्लोक में वर्णित निश्चयात्मिका बुद्धि उसमें नहीं होती। नाना प्रकार के भोगों की आसक्ति और कामना के कारण उसका मन विक्षिप्त रहता है। इस कारण वह अपने कर्तव्य का निश्चय करके परमात्मा के स्वरूप में बुद्धि को स्थिर नहीं कर पाता। अयुक्त के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया है कि मन और इंद्रियों के अधीन रहने वाले विषयासक्त मनुष्य में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। इसमें तो कहना ही क्या है कि उसमें भावना भी नहीं होती, अर्थात परमात्मा के स्वरूप में बुद्धि का स्थिर होना तो दूर रहा, विषयों में आसक्ति होने के कारण वह परमात्मा स्वरूप का चिंतन भी नहीं कर सकता। उसका मन निरंतर विषयों में ही रमण करता रहता है। भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह दिखलाया गया है कि परम आनंद और शांति के समुद्र परमात्मा का चिंतन न होने के कारण अयुक्त मनुष्य का चित्त निरंतर विक्षिप्त रहता है। उसमें राग, द्वेष, काम, क्रोध और लोभ, ईर्ष्या आदि के कारण हर समय जलन और व्याकुलता बनी रहती है, अतएव उसको शांति नहीं मिलती। शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि चित्त में शांति का प्रादुर्भाव हुए बिना कहीं किसी भी अवस्था में किसी भी उपाय से मनुष्य को सच्चा सुख नहीं मिल सकता। विषय संयोग में से और प्रमाद में भ्रम से जो सुख की प्रतीति होती है वह वास्तव में सुख नहीं है, वह तो दुख का हेतु होने से वस्तुतः दुख ही है। आशा की किरण लेकर आई हूँ मैं, किरण आचार्य, ये पॉडकास्ट जहाँ पर होगी ढेर सारी बातें जो हमेशा महकती रहेंगी खुशियों से, आशाओं से, उम्मीदों से, आकांक्षाओं से और उत्साह से, यानी कि ये है आपके जीवन में एक नया सूर्योदय। तो फिर हमेशा मिलते रहिए आशा की किरण में हमसे।